चलिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही छोटा सा पुराना पारिवारिक बिजनेस है।
हाँ, जो किसी एक छोटी सी गली में हो।
एग्जैक्टली, एक ऐसी गली जहां कभी चहल पहल हुआ करती थी, एक अपनापन था। लेकिन अब उस गली के ठीक नुक्कड़ पर एक विशाल और एकदम निर्मम कॉरपोरेट मोनोपोली ने कब्जा कर लिया है।
ओह, जिसने बाकी सारी दुकानों को बर्बाद कर दिया होगा।
बिल्कुल, उस बड़ी कंपनी ने पिछले कुछ सालों में आसपास की बाकी सारी दुकानों को एक एक करके निगल लिया है। किसी को खरीद लिया, किसी को बंद करवा दिया।
राइट।
और अब उस पूरी गली में सिर्फ ये एक छोटी सी दुकान बची है, और उस दुकान के अंदर बैठे हर एक इंसान को ये पूरी तरह भानक है कि अगला नंबर उनका ही है।
वही तो, उस स्थिति में जो डर होगा ना, वो दिमाग को बिल्कुल सुन कर देने वाला होगा।
हाँ, मतलब इंसान सोचे समझे बिना फैसले लेने लगता है।
बुनियादी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो या तो लड़ने पर मजबूर करता है या भागने पर। पर जब लड़ना असंभव होना तो लोग सच्चाई से भागने लगते हैं। एक ऐसी घड़ी जो छिपी हुई कमजोरियों को बाहर निकाल लाती है। सही कहा, वो किसी भी समाज के असली फितरत को पूरी तरह से सामने ले आती है।
तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी बारे में बात करेंगे। ऐसा ही कुछ खौफ का माहौल करीब 722 ईसा पूर्व मतलब 722 BC में जुड़ा के लोगों के सामने था।
हाँ, और इसी को समझने के लिए हम डॉक्टर जॉन ऑसवाल्ड के विश्लेषण को देखेंगे, जो उन्होंने आयजाया के अध्याय 28 और 29 पर दिया है।
राइट। हम इन स्रोतों को खंगाल कर इस बात की तह तक जाएंगे कि जब किसी राष्ट्र पर अस्तित्व का संकट आता है तो लोग क्या करते हैं।
कैसे लोग शांति से सही रास्ते का इंतजार करने के बजाय अपने अहंकार, झूठी सुरक्षा और नशे का सहारा लेते हैं।
बिल्कुल, और इस चर्चा का मुख्य संदेश यही है कि उन सभी पर कैसा शोक आता है जो थोड़ा सा धैर्य रखकर विश्वास नहीं कर सकते।
इस इतिहास को समझने के लिए हमें थोड़ा उस वक्त के भौगोलिक नक्शे पर ध्यान देना होगा।
हाँ, ताकि हम उस दर की गहराई को महसूस कर सके, है ना।
एग्जैक्टली। तो 722 BC में एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी। समारिया, जो उत्तरी राज्य यानी एफ्राइम की राजधानी थी, उसका पूरी तरह से पतन हो चुका था।
तो मतलब वो छोटा सा पारिवारिक बिजनेस जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो असल में दक्षिणी राज्य जुड़ा था।
हाँ, वो अब बिल्कुल अकेला बचा था, और उनके ठीक सरहद पर जो सेना खड़ी थी वो असीरिया की सेना थी।
ओह, असीरियंस, इतिहास में उन्हें काफी खतरनाक माना जाता है ना।
अरे, खतरनाक एक छोटा शब्द है। उनका राज करने का पूरा निजाम डर और निर्मम हिंसा पर आधारित था। स्रोतों के अनुसार आज के आधुनिक दौर के सबसे क्रूर तानाशाह, मतलब नाजीज वगैरह भी शायद उनके सामने कमजोर लगे।
वेट, सच में?
हाँ, क्योंकि असीरिया की सेना दुश्मन के मनोबल को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने में माहिर थी।
ये काफी डरावना है। पर एक बात जो यहाँ दिलचस्प है वो ये कि जूडा असल में उनका आखिरी लक्ष्य नहीं था।
राइट, उनकी नजर तो इजिप्ट पर थी।
बिल्कुल, इजिप्ट उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इजिप्ट तक पहुंचने का जो तटीय रास्ता था वो ठीक जूडा के बीच से होकर गुजरता था।
तो असीरिया की विशाल सेना जूडा की सरहद से कुछ ही मील की दूरी पर डेरा डाले बैठी थी।
सोचिए उस दौर में जूडा के आम नागरिकों का क्या हाल होगा। हर सुबह उठते ही डर लगता होगा कि किसी भी दिन ये सेना उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाएगी।
और इसी खौफनाक माहौल में, इस पूरे प्रसंग में एक हिब्रानी शब्द बार बार गूंजता है, वो
जिसे हम इंग्लिश में अलास या डूम कहते हैं और हिंदी में शोक या विनाश।
हाँ, पर इस शब्द के पीछे का जो मनोवैज्ञानिक असर है वो समझना जरूरी है।
यही पर इस चर्चा का नजरिया थोड़ा बदलता है। आमतौर पर जब हम इन पुरानी किताबों में विनाश या शोक जैसे शब्द पढ़ते हैं तो कैसा लगता है?
ऐसा लगता है जैसे कोई आसमान से गुस्से में सजा दे रहा हो।
एग्जैक्टली, जैसे कोई क्रोधित नेता धमकी दे रहा हो कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पर स्रोत बताता है कि यहाँ भावना बिल्कुल अलग है। यहाँ ये गुस्से भरी धमकी नहीं है।
तो फिर ये क्या है?
ये एक आने वाले जनाजे की आवाज है, एक फ्यूनरल डिर्ज जिसे कहते हैं। ये एक रुला देने वाला दुख है।
ओ, मतलब धमकी में तो एक उम्मीद होती है कि सामने वाला डर कर ठीक हो जाए।
ईद या जनाजे की धुन बजती है तो उसका मतलब है कि वक्त निकल चुका है। ये उस बात का दुख है कि जो रास्ता चुन लिया गया है उसकी आखिरी मंजिल तबाही ही है।
ये गुस्से से ज्यादा किसी अपने को खो देने की पीड़ा जैसा लग रहा है।
बिल्कुल। तो ऐसे हालात में जब तबाही दरवाजे को तोड़ने ही वाली थी, उस वक्त वहां के पढ़े लिखे नेता क्या कर रहे थे?
यहाँ पर मानव स्वभाव की सबसे अजीब साक्षात सामने आती है। उन आखिरी दिनों में
एफ्रेम के नेता अहंकार और नशे में डूबे हुए थे।
नशे में मतलब सच में शराब के नशे में या किसी और चीज के?
देखा जाए तो दोनों। चाहे वो नशा वाकई में शराब का हो जो लोग डर भुलाने के लिए करते हैं, या फिर उनके पद और अहंकार का नशा हो, नतीजा एक ही था। वे लोग आम जनता को सही रास्ता दिखाने में पूरी तरह विफल रहे।
अगर इसको मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो नशा सच्चाई से मुंह छुपाने का एक तरीका है ना?
सही बात है। जब नेताओं को दिख रहा था कि उनकी सेना असीरिया के आगे तिनके के बराबर है, तो उन्होंने सच्चाई को स्वीकारने के बजाय एक ख्याली दुनिया बना ली,
और उन्हें लगने लगा कि उनकी रणनीतियां सबसे बेहतरीन है,
जबकि पूरी दुनिया उनकी इस मूर्खता पर हंस रही थी। जहां उन्हें समझदारी से ठोस कदम उठाने थे, वहां वे जश्न मना रहे थे।
इस अहंकार को समझाने के लिए एक सटीक उदाहरण दिया गया है, एक फूलों का मुकुट या पार्टी रीथ का।
हाँ, जो रात में जश्न के माहौल में काफी सुंदर लगता है।
राइट, पर अगले दिन सुबह क्या होता है? वही मुकुट सूखकर कीचड़ में पड़ा मिलता है और लोग उसे पैरों तले रौंदते हुए निकल जाते हैं। यही उन नेताओं के अहंकार का अंजाम होना था।
लेकिन इस नशीले मुकुट के ठीक विपरीत ईश्वर एक सच्चा मुकुट प्रदान करता है जो अपने साथ मिशपत लाता है।
मिशपात, ये एक बहुत गहरा हाइब्रानी शब्द है। आम बोलचाल में हम इसका अनुवाद न्याय या जस्टिस कर देते हैं, पर स्रोत कहता है कि इसका मतलब सिर्फ कानूनी न्याय नहीं है।
तो फिर इसका असली मतलब क्या है?
इसका अर्थ है सृष्टि की मूल व्यवस्था, एक ऐसी स्थिति जहां हर चीज ठीक उसी जगह पर है जहां उसे होना चाहिए था। ये एक इंटेंडेड ऑर्डर को वापस लाना है।
चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि कानून और व्यवस्था थोड़े सूखे शब्द लगते हैं। मिशपात को हम एक विशाल ऑर्केस्ट्रा की तरह समझ सकते हैं।
ओ, ऑर्केस्ट्रा वाला उदाहरण। हाँ,
जब ऑर्केस्ट्रा में सभी साज, चाहे वायलिन हो या फ्लूट, अपनी सही धुन और तालमेल में बजते हैं, तभी खूबसूरत संगीत बनता है।
लेकिन अगर कोई एक वायलिन बजाने वाला अहंकार में आकर सोचे कि मैं ही सबसे बड़ा कलाकार हूँ, और वो अपनी बेसुरी धुन जोर जोर से बजाने लगे, तो पूरा संगीत बर्बाद हो जाता है।
एग्जैक्टली, वो अहंकार उस ऑर्केस्ट्रा को तबाह कर देता है। मिशपात उस मेन कंडक्टर की तरह है जो आगे आकर उस शोर को रोकता है और सबको वापस उनकी सही धुन पर लाकर फैक्ट्री सेटिंग्स रीसेट कर देता है।
ये ऑर्केस्ट्रा का उदाहरण उस वक्त की स्थिति पर पूरी तरह लागू होता है। जब समाज के नेता ही बेसुरे हो जाएं, तो जनता पर क्या असर पड़ता है?
संचार पूरी तरह टूट चुका होता है। नेता लोग जनता को सही ज्ञान देने में इतने नाकामयाब थे कि जनता की स्थिति बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी रह गई थी,
जिनके पास कोई गहरा ज्ञान था ही नहीं। और इसी को दर्शाने के लिए स्रोत में एक अजीब सा फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, कव्वा वॉकव लेव विलेव।
हाँ, ये फ्रेज सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब क्या बताया गया है?
इसका मतलब है निरार्थक शब्द, या शायद वो सरल आवाजें जो हम छोटे बच्चों को बोलना सिखाने के लिए करते हैं। नेताओं के पास जनता को देने के लिए कोई ठोस ज्ञान या मीट नहीं था,
उन्हें बस खोखली और बचकानी बातें सुनाई जा रही थीं।
और क्योंकि उन्होंने शांति की उन आसान और सीधी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब ईश्वर उन्हें एक अजीब और समझ न आने वाली भाषा बोलने वालों यानी असीरियंस के माध्यम से कठोर सबक सिखाएगा।
डॉक्टर ओसवाल्ट इस पुरानी स्थिति को आधुनिक दौर से भी जोड़ते हैं। वो इम्पार्शियली 9/11 के दौरान आए मनोवैज्ञानिक बदलाव की तुलना करते हैं।
हाँ, उन्होंने कहा कि जब समाज पर इतना कठोर झटका लगता है, तो एक पल के लिए सभी जागृत हो जाते हैं। लोग अचानक एक दूसरे का ध्यान रखने लगते हैं।
लेकिन इंसानी फितरत यह है कि हम बहुत जल्दी वापस अपने उसी भौतिकवाद और अहंकार की नींद में सो जाते हैं। हम उस झटके को भुलाकर वापस वो फूलों का नशीला मुकुट पहन लेते हैं।
पर यहाँ मेरे पास एक सवाल है और एक कड़ी प्रतिक्रिया भी। अगर जनता को सच्चाई पता ही नहीं है, नेताओं उन्हें काव काव जैसे शब्द बोलकर सुला रहे हैं, तो इस सब में बिचारी जनता की क्या गलती है?
ये बहुत ही वैलिड सवाल है।
क्या जनता सिर्फ नेताओं पर अंधा विश्वास करने की कीमत चुका रही थी?
देखा जाए तो जनता पूरी तरह निर्दोष नहीं होती। सच्चाई अक्सर कड़वी और मेहनत मांगने वाली होती है। जनता भी उन अहंकारी नेताओं की झूठी बातों पर विश्वास करना पसंद करती है, क्योंकि वो सुविधाजनक होती हैं।
ओ, मतलब लोग खुद ही झूठी तसल्ली चाहते हैं?
बिल्कुल, वो उस दिखावे और झूठी ताकत से आकर्षित होते हैं, और जब डर बढ़ता है तो यही जनता नेताओं के साथ मिलकर खतरनाक समझौते करने लगती है।
समझौते से मुझे वो अजीब सा हिस्सा याद आ गया, जेरूसलम के नेताओं ने मौत के साथ समझौता कर लिया था।
कोवेनेंट विद डेथ, सुनने में बड़ा काल्पनिक लगता है। कोई मौत से समझौता कैसे कर सकता है?
स्रोत के मुताबिक इसके दो अर्थ हैं। या तो उन्हें लगा कि इजिप्ट की सैन्य ताकत उन्हें बचा लेगी, या फिर उन्होंने सच में केनेनाइट मौत के देवता मौत की पूजा शुरू कर दी थी।
डर के समय इंसान का दिमाग इरेशनल हो जाता है ना, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है। उन्हें लगता है कि अगर मैं इस मौत के देवता को चढ़ावा दे दूं तो शायद ये मुझे छोड़ दे।
मौत देवता की पूजा करना तो बड़ा अंधविश्वासी लगता है, पर एक बात सोचिए, क्या हम आज अपने बैंक अकाउंट्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज को अपना देवता मानकर मौत से बचने का झूठा समझौता नहीं कर रहे हैं?
ये काफी गहरा पॉइंट है। हम आज ऐसी ही झूठी सुरक्षाओं के पीछे भागते हैं, बैंक बैलेंस, गेटेड कम्युनिटीज, इंश्योरेंस। हमें लगता है कि हम मौत और दुख से बच जाएंगे।
हम सोचते हैं मेरे पास इतना पैसा है, मुझे क्या नुकसान होगा। ये आज के दौर के मौत के देवता ही तो हैं।
और यही झूठ समय आने पर टूट जाता है। यहाँ डीट्रिक बॉनहॉफर का एक थॉट काफी फिट बैठता है। उन्होंने कहा था कि आप किसी चीज के सचमुच तभी मालिक होते हैं जब आप जानते हैं कि उसके बिना आप बेहतर होंगे।
वाओ, मतलब जब तक किसी को लगता है कि उसे किसी भौतिक चीज की सख्त जरूरत है, तब तक वो चीज उसकी मालिक बन चुकी होती है।
एग्जैक्टली। अगर एक आर्थिक गिरावट नींद उड़ा दे तो इंसान आजाद नहीं, गुलाम है।
इसी सच्ची आजादी को दर्शाने के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया है, एच जी स्पॉफर्ड का, जिन्होंने वो भजन लिखा था इट इज वेल विद माई सोल।
हाँ, उनकी कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है।
उन्होंने शिकागो की आग में अपना पूरा बिजनेस और जमा पूंजी खो दी थी, और उसके कुछ ही वक्त बाद एक जहाज डूबने की दुर्घटना में अपनी चारों बेटियों को खो दिया।
अपना सब कुछ खोने के बाद वो व्यक्ति गा रहा था कि मेरी आत्मा में शांति है, ऐसा कैसे संभव है?
क्योंकि उसने झूठी सुरक्षाओं पर जीवन नहीं बनाया था। उसका नाता एक ऐसी सच्ची नींव से था जो कभी हिल नहीं सकती, जिसे कॉर्नर स्टोन कहा गया है।
और यही कॉर्नर स्टोन इस विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। ईश्वर ने जायन में एक सच्ची नींव रखी है, जिसका विश्वास इस पर पक्का है, वो घबरा कर जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेता।
स्रोत कहता है, अ ट्रस्टिंग लाइफ वोंट टॉपल। लेकिन यहाँ एक और रोचक एनालॉजी आती है, अगर ये नींव इतनी ठोस है तो उन अनपढ़े लिखे नेताओं को समझ क्यों नहीं आई?
उसके लिए एक किसान का उदाहरण है। एक अनपढ़ किसान भी सृष्टि के नियम जानता है, उसे मिशफट की समझ होती है।
हाँ, उसे पता है कब हल चलाना है और कब बीज बोना है। वो बीज को छीक कर जल्दी पेड़ बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
तो नेता इन बुनियादी नियमों को क्यों नहीं समझ रहे थे?
क्योंकि किसान प्रकृति के आगे झुकता है, पर नेताओं का अहंकार उन्हें अंधा कर चुका था। यरूशलेम के नेताओं को लगता था कि ईश्वर को उनकी और उनके मंदिर की जरूरत है।
जैसे अगर वे बलिदान नहीं देंगे तो ईश्वर भूखा रहेगा। वे ईश्वर को अपना पालतू समझ बैठे थे।
सही बात है, पर ईश्वर चेतावनी देता है कि उनका अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा और उनकी आवाज धूल में से किसी भूत की तरह आएगी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है,
एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट।
जो दुश्मन थे असीरियंस, वो अचानक भूसे या चाफ की तरह हवा में उड़ जाएंगे।
और यहाँ इस लेक्चर की सबसे मुख्य लाइन आती है, जजमेंट इज नेवर गॉड्स इंटेंडेड लास्ट वर्ड। न्याय या सजा कभी भी ईश्वर का अंतिम इरादा नहीं होता।
तो फिर इस तबाही का मकसद क्या था?
विनाश हमेशा पश्चाताप, शुद्धि और नई शुरुआत के लिए होता है। जैसे एक माली सूखी शाखाओं को काट देता है ताकि नए पत्ते आएं। सजा अहंकार को जलाने के लिए होती है ताकि सच्ची नींव दिख सके।
इन सब का निचोड़ निकालते हुए स्रोत अध्याय 29 से एक और गहराई वाली बात कहता है, होठों से आदर करना पर दिल से दूर रहना।
आज भी हम यही देखते हैं, लोग धार्मिक और नैतिक नियम केवल आदत के तौर पर पूरे करते हैं, कमांडमेंट्स टॉट बाय मेन।
उनका आचरण ईश्वर के सच्चे प्रेम से नहीं बल्कि दिखावे से आता है। बाहर से दोनों आचरण एक जैसे दिखते हैं,
पर उनकी बुनियाद अलग होती है, और ये फर्क तब दिखता है जब संकट आता है।
तो चर्चा के अंत में हम एक नए विचार पर सोचते हैं, अगर न्याय या संकट ईश्वर का अंतिम इरादा नहीं है बल्कि एक प्रूनिंग या शुद्धि का तरीका है,
तो इसका मतलब हमारे जीवन के सबसे बुरे दौर, जब हमारा अहंकार कीचड़ में मिल जाता है, वही वो पल होते हैं जब हम सच्ची नींव को पहचान पाते हैं।
वही तो, हम सारी उम्र उस शोक से बचने की कोशिश में झूठी सुरक्षाओं के पीछे भागते हैं, पर क्या हो अगर उन झूठी सुरक्षाओं का टूटना ही एकमात्र रास्ता हो एक ऐसे जीवन की ओर जो कभी न गिरे।
ये सच में एक डीप और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है।
बिल्कुल, इस विचार को आप सभी के चिंतन के लिए छोड़ते हुए हम इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं।